नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने पीओजेके में तथा कथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। युगांडा में अंतिम मरीज के ठीक होने के बाद देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आज राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
श्री जायसवाल ने कहा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दशकों से भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। उन्होंने कहा कि भारत में जेन जी सहित सभी लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का अंत होना चाहिए। पाकिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता पर श्री जायसवाल ने कहा कि जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, वो किसी भी प्रकार की बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत का दावा नहीं कर सकता। चीन के साथ सीमा व्यापार पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देश पिछले वर्ष 3 निर्धारित व्यापारिक बिंदुओं लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए थे। श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागदार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
युगांडा में जून के मध्य में अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कोई नया मामला दर्ज न होने के कारण युगांडा को आधिकारिक तौर पर इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। इबोला वायरस के दुर्लभ बंडी बुग्यो स्ट्रेन के कारण फैले इस प्रकोप की पुष्टि युगांडा में सबसे पहले तब हुई जब पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DR Congo से संदिग्ध मामले सीमा पार करके आए।
युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पहले मामले कांगो के नागरिकों के थे जो इबोला के इलाज के लिए युगांडा में आए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि युगांडा ने इबोला रोगियों के संपर्क में आए सभी लोगों की बारीकी से निगरानी करके इसके प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। इबोला रोगियों के संपर्क में आए सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया और उन्होंने आगे संक्रमण के किसी भी लक्षण के बिना आवश्यक 21 दिवसीय निगरानी अवधि पूरी की। इस प्रकोप के लिए जिम्मेदार बंडी बुग्यो स्ट्रेन अभी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि वर्तमान में इसके लिए कोई स्वीकृत टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई। बातचीत से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और अमरीका के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करना है।
बैठक के बाद जेलेंस्की अमरीकी कैपिटल का दौरा करेंगे, जहां वे सीनेटरों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों की उपग्रह तस्वीरें उपलब्ध कराकर मौजूदा जारी संघर्ष के दौरान ईरान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पहले वाशिंगटन पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के चुने जाने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये आठवीं मुलाकात होगी। रवाना होने से पहले श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों नेता कार्यसूची में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले ईरान का मुद्दा होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। इस सफल संचालन से कोलकाता बंदरगाह से विराटनगर तक कंटेनरीकृत माल की सीधी रेल ढुलाई संभव हो गई है, जिसमें सीमा पर माल का स्थानांतरण नहीं होगा।
इस नई व्यवस्था से पारगमन समय, लॉजिस्टिक्स लागत और माल प्रबंधन में कमी आने की उम्मीद है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार व्यापार की दक्षता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि सीधी माल ढुलाई सेवा से आयात और निर्यात माल की आवाजाही को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये सेवा परिवहन का एक तेज, अधिक सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करती है। मंत्रालय ने कहा कि कई अलग अलग स्थानों पर माल के हस्तांतरण की समस्या को कम करके और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करके ये पहल निर्यातकों, आयातकों, लॉजिस्टिक संचालकों और सीमा पार व्यापार में लगे उद्योगों को लाभ पहुंचाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच सीमा पार हिंसा में 57 लोग मारे गए और 342 लोग घायल हुए हैं। इन सभी के लिए पाकिस्तान के सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। लीबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने त्रिपोली के पास एक महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसर में धावा बोल दिया। ये प्रदर्शनकारी लंबे समय से जारी बिजली कटौती को लेकर विरोध कर रहे थे। इससे देशव्यापी ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी बेहतर बिजली सेवाओं और प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दिबेबा की राष्ट्रीय एकता सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जापान के दक्षिणी कुमामोतो प्रांत में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे क्षेत्र में 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और सड़क संपर्क भी अवरुद्ध हुआ। भूकंप के कारण रेल और परिवहन सेवाओं पर भी व्यापक असर पड़ा है। स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि लगभग 3 लाख निवासियों को निर्धारित आश्रय स्थलों पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है, जिससे गंभीर यकृत रोग और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, जो लोगों और उनकी जान बचाने वाली सेवाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने का आह्वान है। चीन के हांगजो में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने POJK में तथा कथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। युगांडा में अंतिम मरीज के ठीक होने के बाद देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आज राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।